ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। संसद के दोनों सदनों में आज लगातार पांचवें दिन विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कामकाज में रुकावट आई। दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक स्थगित कर दी गई है। विपक्ष ने एक प्रमुख व्यापारिक समूह के खिलाफ कथित रिश्वतखोरी के आरोपों और उत्तर प्रदेश के संभल में हिंसा सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर हंगामा किया। इस कारण कार्यवाही पहले दोपहर 12 बजे तक और फिर बाद में दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही सवेरे शुरू होते ही विपक्षी सांसद व्यापारिक समूह के खिलाफ कथित रिश्वतखोरी के आरोपों, संभल में हिंसा और मणिपुर की स्थिति सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की मांग को लेकर खड़े हो गए। अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष की नारेबाजी जारी रही। 12 बजे जब कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो विपक्ष का हंगामा जारी रहने के कारण सदन की कार्रवाई दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी विपक्ष ने इन्हीं और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर हंगामा किया। सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्षी सांसदों द्वारा दिए गए स्थगन नोटिस को खारिज कर दिया। सभापति ने सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलने देने का आग्रह किया, लेकिन शोर शराबा जारी रहा, जिसके बाद सभापति ने सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सदन की कार्यवाही जब दोबारा शुरू हुई तब भी ऐसी ही स्थिति बनी रही, इस कारण कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र को सस्ता और सुलभ बना रही है। आज नई दिल्ली में उन्होंने संवाददाताओं को बताया कि देश में वर्ष 2014 में 387 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन एक दशक में इनकी संख्या दोगुनी होकर 780 हो गई है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 12 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिल रहा है और इसे 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों को भी उपलब्ध कराया गया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस आज राज्य विधानसभा के 6 नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी विधानसभा में उपस्थित रहेंगी। राज्य में हाल ही में संपन्न हुए उपचुनाव में ये विधायक निर्वाचित हुए हैं। ये सभी विधायक तृणमूल कांग्रेस के हैं। पिछले 8 महीनों के दौरान देश की कैप्टिव और वाणिज्यिक खदानों से कुल कोयला उत्पादन 11 करोड़ 20 लाख टन से अधिक हो गया है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग 35% अधिक है। कोयला मंत्रालय ने कहा कि नवंबर में इन खदानों से कुल 1 करोड़ 70 लाख टन कोयले का उत्पादन हुआ। मंत्रालय के अनुसार कोयला उत्पादन में ये वृद्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प के अनुरूप है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार प्रदान करेंगी। कुल 22 व्यक्तियों और 11 संस्थानों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार इस अवसर पर दिव्यांगजन के सशक्तिकरण के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री खड़ग प्रसाद शर्मा ओली आज चीन की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर बीजिंग के लिए रवाना हो गए। वे चीन के प्रधानमंत्री ली छियांग के निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ओली बीजिंग में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री ओली वहां के प्रधानमंत्री ली छियांग के साथ भी बातचीत करेंगे। दोनों नेता आपसी हितों के विभिन्न मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने पुत्र हंटर बाइडेन के लिए राष्ट्रपति क्षमादान जारी किया है। हंटर बाइडेन को कर अपराधों, अवैध हथियार रखने और बंदूक संबंधी मामले पर गलत बयानी करने के आरोप में दोषी ठहराया गया था। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक आधिकारिक बयान में अपने इस फैसले का बचाव किया है। उन्होंने हंटर बाइडेन पर लगाए गए आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया। इस बीच श्री ट्रंप ने हंटर बाइडेन को क्षमादान दिए जाने की निंदा की है। फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत कार्य एजेंसी ने घेराबंदी वाले क्षेत्र में मानवीय सहायता को बाधित करने वाली लूट के बाद केरेम शालोम क्रॉसिंग के माध्यम से गाजा में अपने सहायता कार्यों को निलंबित कर दिया है। ये निर्णय पिछले महीने की 16 तारीख को सशस्त्र गिरोहों द्वारा सहायता ट्रकों के पूरे काफिले को जब्त करने के बाद लिया गया है। मौसम विभाग ने चक्रवात और निम्न दबाव के कारण केरल में अगले 4 दिन तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आज राज्य के 4 जिलों में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।